विभिन्न समुदायों में मातुलेह का प्रचलन क्यों हुआ, इसे मातृसत्तात्मक व्यवहार के आधार पर समझा जा सकता है। सभ्यता के आरंभिक युग में स्त्री के अनेक पति हुआ करते थे। आज भी कुछ जनजातियों में बहुपति विवाह का प्रचलन है। ऐसे समाजों में यह जान सकना बहुत कठिन होता है कि बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। इस दशा में बच्चे के प्रशिक्षण और संपत्ति अधिकारों के लिए माता के भाई मामा को ही सबसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति समझा जाने लगा। चौथी हेडिंग है सहकष्टी। साधारण रूप से नातेदारी की एक रीत के रूप में सहकष्टी की प्रकृति बहुत मनोरंजक दिखाई देती है, लेकिन यह रीति प्रत्येक दशा में पति पत्नी के मधुर संबंध हो तथा उसके बीच समानता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। यह वह रीति है जिसके अनुसार पत्नी को होने वाले किसी भी कष्ट अथवा पीड़ा के अवसर पर उसके पति को भी उसी तरह के कष्ट और पीड़ा का अनुभव और प्रदर्शन करना होता है। इसका सबसे स्पष्ट रूप असम की खासी जनजाति में उस समय देखने को मिलता है जब कोई स्त्री गर्भकाल में होती है। जिस तरह गर्भकाल में पत्नी को एक विशेष तरह का भोजन करने के साथ ही अनेक नियमों का पालन करना होता है, उसी तरह पति को भी वही भोजन दिया जाता है, तब पति भी अपनी पत्नी की तरह अनेक निषेधों का पालन करता है। इस जनजाति में बच्चे का जन्म होने तक एक गर्भवती स्त्री न तो कपड़े धोती है और न ही वह नदी पार करके ही जाती है। पति को भी इन नियमों का उसी तरह पालन करना आवश्यक है। सहकष्टी रीति का चरम रूप तब देखने को मिलता है जब प्रसव के समय पत्नी पीड़ा के कारण रोने चिल्लाने लगती है, तब पति भी उसी तरह का पीड़ा प्रदर्शन करना पड़ता है। जिस तरह बच्चे को जन्म के बाद कुछ निर्धारित दिनों तक पत्नी को एक अलग स्थान पर रहकर भोजन और स्पर्श संबंधी नियमों का पालन करना होता है, उसी तरह पति भी एक निर्धारित स्थान के बाहर नहीं जा सकता। साधारण रूप से सहकष्टी नातेदारी की एक मनोरंजक रीति दिखाई देती है, लेकिन जिन समुदायों में इस रीति का प्रचलन है वहाँ इसका आरंभ कुछ मनोवैज्ञानिक कारणों के आधार पर हुआ। मानव शास्त्री यह मानते हैं कि व्यवहार की इस रीति से पुरुष अपनी पत्नी के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। दूसरी बात यह है कि पत्नी को किसी तरह का कष्ट होने पर जब उसका पति भी उसी तरह के कष्ट का अनुभव करता है तो स्त्री को इससे एक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है। पारिवारिक संबंधों को अधिक मधुर बनाने में यह रीति महत्वपूर्ण है। एससी दुबे का विचार है कि जिन समाजों में बहुपति विवाह का प्रचलन है उनमें इस रीति के द्वारा बच्चे के पितृत्व का निर्धारण होता है। का तात्पर्य है कि स्त्री के अनेक पतियों में से जो पति सहकष्टकारी रीति के अनुसार व्यवहार करता है उसी को जन्म लेने वाले बच्चे का पिता मान लिया जाता है। फ्रेजर का विचार है कि पत्नी के गर्भकाल में पति द्वारा भी समान निषेधों का पालन करना इसलिए किया जाता है कि जिससे उस पर किसी तरह का जादू टोना न किया जा सके। वास्तव में यह रीति मातृसत्तात्मक समाजों की ही विशेषता है। पांचवी हेडिंग है माध्यमिक संबोधन। शाब्दिक रूप से माध्यमिक संबोधन का अर्थ है किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक नाम से संबोधित न करके किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से संबोधित करना। इस रीति के अनुसार एक व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह अपने कुछ नातेदारों को पुकारने या उन्हें संबोधित करने के लिए उनका नाम न ले बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उसे संबोधित करे। व्यवहार में यह रीति अनेक जनजातियों में प्रचलित होने के साथ ही हमारी ग्रामीण संस्कृति में भी देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए जब कोई स्त्री अपने पति सास ससुर जेठ या अधिक आयु के किसी दूसरे नातेदार को संबोधित करती है तो साधारणतः उसका नाम नहीं लिया जाता। उदाहरण के लिए यदि एक स्त्री किसी पुरुष को चमन के बापू होती के बाबा या रामू के ताऊ जैसे शब्दों से संबोधित करती है तो यह रीति माध्यमिक संबोधन की प्रकृति को स्पष्ट करती है। कभी कभी यह संबोधन इतने अप्रत्यक्ष और काल्पनिक होते हैं कि किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उसका अर्थ समझना भी कठिन हो जाता है। ग्रामीण संस्कृति में स्त्रियों द्वारा अक्सर उन वस्तुओं अथवा स्थानों तक का कोई काल्पनिक नाम रख लिया जाता है जिनमें उनके पति या परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य के नाम के अंश का भी समावेश हो। उदाहरण के लिए यदि पति का नाम गंगाराम है तो पत्नी द्वारा गंगा नदी को भी गंगा न कहकर बड़ी नदी या बापू वाली नदी के नाम से संबोधित किया जाने लगता है। ऐसे संबोधनों का चरम रूप तब देखने को मिलता है जब किसी स्त्री के ससुर का नाम रंगीलाल होने पर वह नारंगी शब्द का उच्चारण नहीं करती बल्कि नारंगी के लिए किसी काल्पनिक शब्द का प्रयोग करने लगती है। माध्यमिक संबोधन की रीत के कारणों को भी अनेक आधारों पर स्पष्ट किया गया है। टायलर का विचार है कि मातृसत्तात्मक परिवारों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की स्थिति ऊंची होने के कारण परिवार में पुरुष को एक बाहरी सदस्य के रूप में देखा जाता था। इसी कारण उसके वास्तविक नाम को महत्व नहीं देकर पुरुष को परिवार के किसी बच्चे के नाम के माध्यम से संबोधित किया जाने लगा। यह कारण सही मालूम नहीं होता क्योंकि माध्यमिक संबोधनों का प्रचलन मातृसत्तात्मक समाजों की तुलना में पितृसत्तात्मक और ग्रामीण समाजों में अधिक है। इसका तात्पर्य है कि परिवार के बड़े सदस्यों के प्रति विशेष आदर और सम्मान दिखाने के लिए भी माध्यमिक संबोधनों का प्रचलन हुआ। जनजातियों में उनकी भाषा के शब्द इतने सीमित है कि सभी नातेदारों के लिए अलग अलग संबोधनों का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। इससे माध्यमिक संबोधनों के प्रचलन का एक विशेष कारण होता है। नातेदारी के विभिन्न रीतियों के इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न समाजों में स्त्री पुरुषों के अधिकारों तथा सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार ही उनमें नातेदारी की कुछ विशेष रीतियां प्रचलित हो जाती हैं। हेडिंग है नातेदारी का सामाजिक महत्व। अन्य सामाजिक संस्थाओं के समान नातेदारी भी एक प्रमुख संस्था है। किसी सामाजिक संरचना को समझने के लिए इसका विशेष महत्व है। वास्तव में नातेदारी एक ऐसी संस्था है जो एक वंश के विभिन्न सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करती है तथा दूसरे सदस्यों की तुलना में व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण करती है। सरल समाजों में व्यक्ति के व्यवसाय, उत्पादन, उपभोग के रूप तथा मताधिकार आदि की प्रकृति का निर्धारण भी अक्सर नातेदारी संबंधों के आधार पर ही किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में नातेदारी की सामाजिक भूमिका को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहला, ब्राउन का कथन है कि नातेदारी का मुख्य कार्य विवाह और परिवार के रूप को व्यवस्थित बनाना है। कृषक और जनजातीय समाजों का रूप इतना सरल होता है कि यहाँ व्यक्ति के सामाजिक तथा पारिवारिक संबंधों को व्यवस्थित बनाने के लिए कोई निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते। इस दशा में नातेदारी संबंध द्वारा ही यह स्पष्ट किया जाता है कि एक व्यक्ति के संबंध अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार होंगे, व्यक्ति किस समूह और कुल में विवाह संबंध स्थापित करेगा तथा संपत्ति अधिकारों के विषय में व्यक्ति के व्यवहार क्या होंगे। दूसरा, मर्डॉक ने लिखा है कि नातेदारी व्यक्ति की द्वितीय रक्षा पंक्ति है। इसका तात्पर्य है कि सरल समाजों में नातेदारी संबंध व्यक्ति के सामाजिक बीमे का कार्य करते हैं। किसी विपत्ति अथवा कठिनाई के समय नातेदारों के द्वारा ही व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इससे व्यक्ति स्वयं को अकेला और असहाय महसूस नहीं करता। तीसरा, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करने में भी नातेदारी संबंधों की विशेष भूमिका है। सरल और छोटे समाजों में व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण उसके वंश की प्रतिष्ठा और शक्ति के आधार पर होता है। इसी कारण नातेदारी संबंधों से बंधे हुए व्यक्ति सदैव एक दूसरे की सहायता करते रहने का प्रयत्न करते हैं। चौथा, सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाने में भी नातेदारी का विशेष महत्व है। इसका संबंध में नेल्सन ग्रेवर्स ने लिखा है कि नातेदारी व्यवस्था में वे सभी तत्व विद्यमान हैं जिनकी समाज को संगठित करने के लिए आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, संबंधों की प्रगाढ़ता, परिस्थिति और भूमिका का निर्धारण, सदस्यों द्वारा दायित्वों का निर्वाह तथा सामाजिक मूल्यों का पालन आदि इसी के तहत होता है। पांचवी, नातेदारी का एक विशेष कार्य व्यक्ति को अपने सामाजिक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व का प्रशिक्षण देना है। नातेदारी समूह एक बृहत परिवार अथवा कुल के समान है जिसमें सभी व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के अधिक से अधिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हैं तथा अपनी पारिवारिक परिस्थिति, आयु और लिंग का ध्यान रखते हुए दूसरे सदस्यों को वंश के नियमों तथा सामाजिक मूल्यों का पालन करने का प्रशिक्षण देते हैं। इसी के फलस्वरूप व्यक्ति का जीवन अधिक अनुशासित बन जाता है। छठा, नातेदारी व्यवस्था के अनेक सांस्कृतिक नियमों से बंधी होने के कारण परिवर्तनशील नहीं होती। इसके फलस्वरूप नातेदारी संबोधनों तथा नातेदारी की श्रेणियों के द्वारा एक विशेष समूह तथा कुल के इतिहास को भी सरलता से समझा जा सकता है। सातवां, सामाजिक संबंधों में सुदृढ़ता लाने में भी नातेदारी का विशेष योगदान है। विभिन्न सामाजिक आयोजनों जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह अथवा कर्मकांडों के अवसर पर सभी नातेदारों द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होने तथा आयोजनों में सहभाग करने से सामाजिक संबंध अधिक सुदृढ़ बनने लगते हैं। नातेदारी के इस सामाजिक महत्व को देखते हुए अधिकांश समाज विज्ञानी किसी विशेष समाज की संरचना को समझने के लिए नातेदारी संबंधों का अध्ययन करना और अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हेडिंग है नातेदारी संबंधों में परिवर्तन। वर्तमान युग परिवर्तन का युग है जिसमें सभी सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संरचनाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हो रहे हैं। नातेदारी संबंधों में भी आज अनेक संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन हुए हैं। पहला, सर्वप्रथम नातेदारी संबंधों में अब औपचारिकता तथा दिखावे की विशेषताएं उत्पन्न होने लगे हैं। नातेदारी संबंधों से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा एक दूसरे से दूर के स्थानों पर रहने के कारण वे नातेदारी समूह को अपनी सुरक्षा का आधार नहीं मानते। दूसरा, नातेदारी का एक प्रमुख कार्य वंश की संपत्ति में व्यक्ति के अधिकार का निर्धारण करना था। आज उत्तराधिकार का निर्धारण कानूनों के द्वारा होता है, अतः व्यक्ति नातेदारी के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं समझता। तीसरा, विवाह का प्रकार तथा विवाह के नियम नातेदारी संबंधों का आधार थे, किंतु आज विवाह पर परिवार का प्रभाव तेजी से कम होता जा रहा है। इस दशा में नातेदारी व्यवस्था का मूल प्रकार ही महत्वहीन हो गया है। चौथा, नातेदारी एक नातेदारी समूह के अंदर भी उसी व्यक्ति को अधिक अधिकार मिलते हैं जो आर्थिक अथवा राजनीतिक जीवन में अधिक सफलताएं प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी आयु अथवा लिंग का हो, नातेदारी में उसका पदाधिकार ऊंचा हो जाता है। पांचवा, सामाजिक संबंधों की सुदृढ़ता में भी नातेदारी संबंध अब उतने महत्वपूर्ण नहीं है। विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक आयोजनों के अवसर पर व्यक्ति अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा सहकर्मियों को आमंत्रित करना अधिक उपयोगी और आवश्यक मानता है। इस दशा में भी नातेदारी संबंधों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। नातेदारी संबंधों में होने वाले परिवर्तन के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इन कारकों में कृषक समूहों का औद्योगिक समूह में बदलना, नगरीकरण में वृद्धि होना, संयुक्त परिवारों का टूटना, स्थान परिवर्तन की प्रकृति में वृद्धि होना तथा जातिगत व्यवसाय के महत्व में कमी आना आदि प्रमुख है। इनके अतिरिक्त जनसंख्या में होने वाली वृद्धि, उत्पादन के नए ढंगों, व्यक्तिवादी जीवन पद्धति तथा नए राजनीतिक और व्यावसायिक संबंधों के कारण भी नातेदारी संबंधों में तीव्रता से परिवर्तन हो रहा है। वास्तव में नातेदारी संबंध सरल समाजों के लिए ही अधिक महत्वपूर्ण है। आज जैसे जैसे सरल समाज औद्योगिक और जटिल समाजों के रूप में बदल रहे हैं, नातेदारी संबंधों का प्रभाव भी तेजी से कम होता जा रहा है। इस प्रकार आपकी नातेदारी व्यवस्था यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।